नंबर के रजिस्टर में 50 की फीस पर पूरे 8 का ट्रैफिक लगा चला है तक भी जगह कर आई की एक लाइन सुन करके नीचे नीचे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कामन गीत परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। कहां से तकदीर जगह कराई पूर्व जन्मों की करनी से ही तकदीर जगा कर आई हूँ। इसलिए कहा जाता है बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है। संसार तो वैसा ही होगा जैसे हमने कर्म किए हैं तो बच्चों को बाप मिला है खुश होना चाहिए कि मैं पूर्व जन्मों से ही तकदीर जगा कर आई हूँ। बाप यहाँ करके हर जी से शास्त्र का अर्थ समझाते हैं लेकिन उनके बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई पति में तकदीर जगी ही रहती कोई सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बात है। जैसे बच्चों की तकदीर जगाते हैं जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है बच्चा जन्म और उनको ये पता चल जाता है कि हम बारिश वो बहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्सर पवित्र होता है पवित्र ग्रस्त आश्रम उनके अगेंस्ट में फिर है अपवित्र पतित धर्म आश्रम नहीं जाना है। ग्रस्त धर्म तो सबका है ही जानवरों का भी बच्चे तो सब पैदा करते हैं जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे देवी देवताएं थे उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम ये खुद भी गाते थे। अभी समझते हो मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं देवी देवताओं का धर्म है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं ब्रह्मा देवताएं नमः विष्णु देवताएं नमः शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्मा तो फर्क हो गया ना। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते पत्थर बुद्धि से अभी तो पारस बुद्धि बन रहे हैं देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। तो ड्रामा प्लेन अनुसार रावण राज्य होने से उनकी भी सीढ़ी उतरनी शुरू होती है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना ही सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बात है तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ के भी मंदिर वहाँ मेला लगता है परंतु ये किसी को पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बात ही है पारस पत्थर की क्या विशेषता होती है रहते उसको चूने से सोना बन जाता है। अब कोई ऐसा पत्थर नहीं होता है जिससे चूने वाते कोई सोना बन जाए ये तो चैतन्य आत्मा की बात है कि कोई चैतन्य आत्मा है पुरुषार्थ करते करते ऐसी श्रेष्ठ बन जाती है उसके संग के रंग से सब आत्माएं सत्य की श्रेष्ठ से उसको पकड़ लेती है उसको भी पारस बनाने वाला बाप है सुप्रीम कोर्ट वो है बुद्धिमानों की बुद्धि यह है तो बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, कैसे जाया जाता है तीन नोरीवल सात नोरीवल। अब बंदरों की तो बात नहीं है, मनुष्य जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं, एप्स को मनुष्य से बैठ की जाती है, तो कहा जाता है ये सब जंगल के बंदर मिसल। उसको पाया जाता है कांटों का जंगल, इतना ही कुछ दुख देती रहती है। अभी तुम बच्चों को बुद्धि की खुराक मिल रही है, देह का बाप खुराक दे रहे हैं, ये है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बच्चों को ये खुराक मिल रही है मंथन करने के लिए। अमृत को मंथन करने से निकलता है, तो ये जला भी नहीं है। पानी को मंथन करने से कुछ निकलेगा नहीं। आजकल सब चीज को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं, देवताओं के पैर धो करके पीते हैं पानी रखते हैं उनको भी अमृत कह देते हैं, अंचली समझ लेते हैं। अंचली जो देते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला। गंगा जल के लिए कहते हैं पति तो पावन ही है, कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। अब बाण मारने से गंगा निकलती है क्या? ये तो ज्ञान का बाण है। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते। बाप कहते हैं ये सब बच्ची मार के गुरु हैं, सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, सर्वथा सतगति दाता एक जो सबको साथ ले जाता है। बाप के सिवाय बाप तो कोई ले नहीं जा सकता, ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। शास्त्रों में ये बात आई कहाँ से? शास्त्रों में तो सारी बातें समय संगम इसकी यादगार है। ब्रह्म तो परमात्मा और आत्माओं के रहने का स्थान है, जैसे ब्रह्म रहने का स्थान है वैसे ब्रह्मा भी आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान हुआ। ब्रह्मा का बुद्धि रूपी तेज, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प से ब्रह्मा में ही सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो लीन हो जाने की बात नहीं है। हाँ, उस ब्रह्मा की जो गोद में गए हैं वो स्मृति से उसमें लीन हो जाना चाहते हैं, परंतु लीन तो नहीं हो सकते। ये तो नाटक बना हुआ है। एक आत्मा का पास नहीं मिल सकता दूसरी आत्मा से, ये चक्र तो अनाज चलता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट कैसे होती है ये तो तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्मा अपने बाप और रचना को भी नहीं जानती, जिसको याद भी कहते हैं वो गॉड फादर। आदि के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर बहुत अदब से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वो पतित पावन है, दुखहर्ता है, सुखकर्ता है। एक तरफ कहते हैं वो दुखहर्ता सुखकर्ता है, और फिर कोई दुख देता है या दुख होता है, बच्चा आगे मर जाता है तो कहते हैं ईश्वर ही दुख देता है सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? फिर ईश्वर को गालियां देने लग पड़ते। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? है कहाँ की बात? इन बातों का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में यहाँ कौन से बच्चे पैदा होते हैं? यहाँ रुआनियत के ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में पैदा होते हैं। तो परमात्मा बाप ने वो बच्चे पैदा किए, और परमात्मा बाप ही अगर ले लेता है तो रोने की दरकार है क्या? आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर के पार्ट बजाना है। हिसाब किताब पूरा हुआ
तो वो दूसरी जगह जाकर पार्ट में जाएगी।
ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, हाय तोबा मचाई देते, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी अलुआ खाना, और बाप मरे तो भी अलुआ खाना, लच्छो हुआ होना। हमारा तो एक उससे मरने की तो बात ही नहीं, एक ही बाप दूसरा में कोई ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोह जी तो राजा की कथा भी सुनी है ना, सतुग में तो कब दुख की बात होती नहीं। शास्त्रों में मोह जी तो राजा की कथा किस टाइम की बताइए। ऐसे सतुग में राजा हरिश्चंद्र मोह जी के था, अब सतुग में तो होता नहीं है न, कभी वहाँ अकाली मृत्यु होती है, तो बातें कहाँ की हैं। ये सारी संगम युग की बातें हैं, ब्राह्मणों की दुनिया की। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं, बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब तुमको खाता ही नहीं। काल न आत्मा को और न शरीर को खा सकता है, आत्मा एक शरीर फिर दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है, मनुष्य मेहमान गाते रहते हैं समझते कुछ भी नहीं, गाते हैं अर्पितम केशवम राम नारायणम, सारे देवताओं के नाम एक ही श्लोक में इकट्ठे कर दिए, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। अब बाप समझाते हैं ये पांच विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं, सबको मिला करके एक कर दिया, अच्छे तो माने अच्युत, कि तो माने जो नीचे गिरे, अच्युत माने जो कभी नीचे न गिरे, कभी पति से न बने, वो कौन। एक अच्छे बने आकार ज्योति बिंदु, भले साकार में आता है तो भी उसकी स्टेज कभी नीचे नहीं गिर सकती। और केशव स माना ब्रह्मा, ईश ईश माने स्वामी, शासन करने वाला, ब्रह्मा को भी शासित करने वाला। जैसे मुरली में आए थे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, तो उनको कहेंगे केशव। बाप समझाते हैं इन श्लोकों का सही अर्थ, कैसे अच्युतम केशवम राम और नारायण सब मिलाकर के एक कैसे हो गए। सुप्रीम से बाप जब संगम में बाप के रूप में परमात्मा पाठ बजा के प्रत्यक्ष होते हैं संसार के बीच में, तो जिस स्वरूप से प्रत्यक्ष होते हैं वो स्वरूप में ब्रह्मा की सोल भी है, शिव की सोल समाई हुई है और राम की सोल भी उसी में समाई हुई है। इसलिए सब देवताओं को मिला करके एक श्लोक में इकट्ठा कर दिया। बड़े ऋषि मुनि आदि सबकी बुद्धि काम नहीं करती है। शिवोहन कहना अथवा अपने को ईश्वर कहलाना ये तो महापाप हो गया। बाप आते वही सर्व का सदगति जाता है, इस समय ज्ञान मार्ग है नहीं, तो जरूर भक्ति मार्ग की महिमा होगी। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े आदमी सब जाते हैं तीर्थ करने, तुम तो नहीं जाते। तो वह कहेंगे ये तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहेंगे कि जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। नास्तिक और आस्तिक, आस्तिक माने जिनकी आस्था होती है किसके ऊपर, पत्थरों के ऊपर आस्था हो जाए वो तो अंधश्रद्धा हो गई। हाँ, भगवान को जान करके मान करके फिर उसके ऊपर आस्था रखना, वो हुआ सत्य आस्तिक। जाना ही नहीं,
अंधश्रद्धा बस ऐसे ही पत्थर फेंक कर बेहतर को भगवान समझ लिया, पत्थर बुद्धियों को भगवान समझ लिया, उनको आस्तिक कहेंगे। वो आस्था नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा है। बाप को तो कोई भी नहीं जानते, इसलिए इनको आर्पण की दुनिया कहा जाता है। जो बाप को नहीं जानते वो तो क्या हुए? आर्पण हुए, यतीम हुए। उनका कोई सही डोरी नहीं है, कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना, बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते हैं। आधा तक बरोबर पावन दुनिया थी, जाते भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। ये नगरी बसे दाता धर्म का उपकार। तो जहाँ राम का राज्य होगा वहाँ अधर्म कैसे होगा? कोई रावण कैसे सीता को चुरा सकता है? कैसे भी है वहाँ शेर बकरी कच्चे जल पी के कहा स्वर्ग में वहाँ बकरी भी होती है, बकरी भी नहीं होती है, मच्छी मच्छरी नहीं होते हैं, वो गंद करने वाली वहाँ कोई भी चीज नहीं होती जिसमें बात आती हो। तो बात कहाँ की है? तो राम ही राजा बनता है, राम ही प्रजा बनता है, ये संगम की ही बात है। संगम में ही सारी शूटिंग होती है, राम की आत्मा प्रजा वर्ग में भी कार्य करती है, और फिर राजा भी वही सबसे पहले बनती है। हर तरह का पार्ट उस बीज रूप आत्मा के अंदर समाया हुआ है। इसलिए मुझे बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे से लागू न होती है। तो सारी सृष्टि का बाप है, अच्छे में भी बाप है तो बुरे में भी बाप है। कहते ही है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो राम राजा राम प्रजा ये इस समय की बात हुई। शेर और बकरी कोई सत्य वित्रेता की बात नहीं। शेर जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं और बकरी की तरह पार्ट बजाने वाली आत्माएं वो भी यहाँ संगम युग में है। जैसे त्रिमूर्ति के चित्र के लिए बोला, त्रिमूर्ति के चित्र में उन्होंने तो तीन शेर दिखाई दिए अशोक की लाट में। वास्तव में वो तीन शेर नहीं है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। मनरूपी घोड़ा कहा जाता है और शेर कहा जाता है संसार रूपी जंगल में दहाड़ मारने वाला, और बकरी उसे कहा जाता है कि जो भी आए खोखार उसकी गर्दन पकड़े और कंट्रोल कर ले, जो कंट्रोल कर ले उसी के अंदर में हो जाए। तो वास्तव में बाबा ने ये जो बोला हुआ है पूरे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात है। राम की आत्मा है जैसे शेर, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती, कोई मनुष्य मात्र उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। राम एक है और सीताएं अनेक है, तुम सब हो सीताएं। और ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो संकल्प तो मन ही करता है, तो वो मन रूपी घोड़ा हुआ। और वैष्णो देवी का पार्ट बजाने वाली आत्मा वो हुई अव्वल नंबर सीता, यहां भी रहेगी कंट्रोल में रहेगी, कंट्रोल से बाहर जाने की बात नहीं। तो सत्युग त्रेता की बातें नहीं है, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर के हंसते हैं, बाप आकर के ज्ञान देते हैं ये पति तो दुनिया है। अभी प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या ऊपर बैठ करके? बुलाते ही हैं पति तो पावन आओ आकर के हमको पावन बनाओ। तो ऐसे थोड़े ही कि ज्ञान सुना के चले जाएंगे फिर ऊपर बैठ करके पावन बनाते रहेंगे या बच्चे अपने आप पावन बन जाएंगे, नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बाप को इस धरती पर आना पड़े साकार में पतितों को पावन बनाने के लिए। बुलाते हैं पति तो पावन आओ तो जरूर भारत में ही आया था। ऐसे नहीं कोई सूक्ष्म वतन में आया और साकार शक्ति को पावन बना दिया। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हुआ। शास्त्रों में सभी संत कथाएं नाम रख दिया, व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वो व्यास था भक्ति मार्ग का, वो व्यास था भक्ति मार्ग का। व्यास का अर्थ क्या है? विमान विशेष और आसमाना बैठ जाए, खास इसी काम के लिए बैठ जाए, हितकारी के लिए है, शासन करने का विधान बनाने के लिए। तो संघ में ही सारे विधान तैयार होते हैं। ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहा जाता है, परमात्मा को भी भाग्य विधाता कहा जाता है। तो वो व्यास था भक्ति मार्ग का और ये हुआ ज्ञान मार्ग का। तो भक्ति मार्ग का भी जो आदि व्यास था उसने कोई लिखा नहीं था बैठ करके, जो बाद वाले उसके चेले हुए हैं उन्होंने लिखा। शास्त्र में भी आता है कि व्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। तो ये व्यास देव उनके बच्चे सुखदेव है, तुम अभी सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचारी से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मुझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। व्यास के बच्चे बता दिए, उनका असल नाम शिव है। इनका जो ज्ञान मार्ग का व्यास है उनका असल नाम शिव है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो ही आकर के पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, ऐसे कह देते हैं। अब अंगुष्ठे मिसल इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके, कहाँ प्रकृति के मध्य में। वो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु वो देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया, क्या रियलाइज करना है? वो हमारी मैं आत्मा कौन? इसका मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा बिंदु, ये रियलाइजेशन हो गया। ये तो एक सामान्य बात हो गई कि मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब बिंदु। ये कोई हरेक आत्मा की अलग अलग पहचान नहीं हुई। आत्मा का रियलाइजेशन माने आत्मा को अपने पार्ट का पता चल जाए। मैं आत्मा किस धर्म की हूँ, किस कुल विशेष की हूँ, दुनिया के किस विशेष हिस्से में मेरे को विशेष पार्ट बजाना है, मैं कौन सा माँ का हूँ, ये सब पता चले। 84 जन्मों में मुझे आत्मा ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाया, ये मनन चिंतन मंथन से आत्मा को पता चलने लगे। तो कहेंगे कि रियलाइज किया। तो बाप पूछते हैं तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट लगा हुआ है 84 जन्मों का, जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा तो ऑक्सीजन में कैसे लेती रहती है, जिन्हें का इंड नहीं होता है। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, पर ये तो अनादि है, ये कभी विनाश होता ही नहीं। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, चारों तरफ सागर है। तो पाप कैसे बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा शरीर में रहती है, यह पत्थर बुद्धि के लिए क्रूड संसार सागर है और दिखे सागर भी है। उस सागर में रत्नों का भंडार भी समाया हुआ है और कचड़े का भी भंडार समाया हुआ है। अब बच्चे चाहे रत्नों के भंडार में डूब जाएं और चाहे कचरे के भंडार में डूब जाएं, ये बच्चों के ऊपर है। वो क्या रिसर्च करना चाहते हैं, सागर की छाह किसी ने ले पाई है क्या? दो चीजें हैं जिनका अंत नहीं पाया जा सकता है, एक सागर का और दूसरा आकाश का। आकाश भी चारों तरफ से है और सागर भी चारों तरफ से। सागर में सारी पृथ्वी समाई हुई है, सारे जीव जंतु जैसे समाये हुए हैं, आकाश में भी सारे समाये हुए हैं। तो पाप है ज्ञान सागर। उस ज्ञान सागर में जो आज तुंडे तुंडे मत भिन्ना, सबके अलग अलग मत हैं, उस ज्ञान के सागर में वो सब अलग अलग मत समाये जाएंगे। इसलिए बोला कि चारों ओर सागर ही सागर है। तो तुम्हारी बुद्धि को समझ मिली है, तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देवदेव महादेव को कहते हैं, फिर ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कह दिया? त्रिमूर्ति ब्रह्मा बड़ा कौन हुआ? देव देव माना ब्रह्मा देव विष्णु देव, और उनमें भी बड़ा महादेव। तो एक दो को एक दो के ऊपर रख देते, कभी ब्रह्मा को ऊंचा बनाई दिया और कहीं शंकर महादेव को ऊंचा बनाई दिए, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अर्थ क्या हुआ? अब ब्रह्मा त्रिमूर्ति कैसे हो सकता जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है? तो सूक्ष्म वचन में वो देवता कैसे हो सकता है? ये सूक्ष्म वतनवासी है शंकर, वो अलग और प्रजापिता प्रजापिता अलग। शंकर को पतित नहीं कहेंगे, क्योंकि फरिश्ते पतित नहीं होते, उनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं होता जो पतित बने। और प्रजापिता को पतित कहेंगे क्योंकि पतितन में ही परमात्मा बाप आते हैं। तो शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तो टाइटल है, जैसे परमधाम के चित्र में रामकृष्ण की दो बिंदियां भी दिखाई हुई और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तीन अलग दिखाई हुए। मतलब क्या हुआ? ये टाइटल है, ब्रह्मा कोई एक सोल का नाम नहीं हुआ। ठीक है, आज ब्रह्मा भी है लेकिन सेकेंडरी थर्ड और फोर्थ नंबर का पार्ट बजाने वाला भी ब्रह्मा है, इसलिए चार भुजाएं या चार मुख दिखाई जाती है। जो ब्रह्मा को तो विष्णु बनता है, ब्रह्मा के चार मुख तो विष्णु के भी चार भुजाएं दिखाई जाती है। बाकी रहा शंकर, तो शंकर कहा जाता है मिक्स पार्ट को। ब्रह्मा की सोल भी उसमें समाई हुई है, विष्णु की सोल भी समाई हुई है, बिना उसके विष्णु का पार्ट भी नहीं चल सकता। तो तीनों का जो मिक्स पार्ट है सोल भी उसमें समाया हुआ है, प्रवेश है, इसलिए उसे शंकर कहा जाता है। क्योंकि चार भुजाएं दिखाते हैं, भुजा माने आत्मा, तो चार आत्मा है तो चैतन्य रूप में हो गई, कंबाइंड रूप में पार्ट बजाने वाली चार भुजाओं के रूप में। लेकिन भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई होता है कि अपने आप भुजाएं चलती हैं? भुजाओं को चलाने वाली आत्मा भी तो चाहिए, कंट्रोल करने वाली भी तो चाहिए, तो वो कौन हुआ है? वो तो विष्णु में होता ही नहीं। विष्णु का जो पार्ट चलता है वो तो सतयुग में चलता है या संगम में चलता है? है वो तो संगम में चलता है, संगम में ही अंत के हिस्से में माने सतयुग के आज के हिस्से में विष्णु प्रकट होता है सतो प्रधान चाहिए। तो वहाँ भी कंट्रोल करने वाली आत्मा कौन, जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है उसको कंट्रोलर कोई होगा कि नहीं? तो बाबा तो सतयुग में नहीं होता, और विष्णु कहाँ की बात है, वो संगम की बात है। जब विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है, तो शिव उसमें प्रवेश करेगा क्या? शिव प्रवेश नहीं करता, लेकिन शिव ने जिसमें प्रवेश किया था वो ही उसका कंट्रोलर हो जाता है। किसका? वैष्णो देवी का। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए, शंकर सूक्ष्म वतनवासी और प्रजापिता ब्रह्मा साकार वतनवासी। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है जो कोई समझा सके। बाप कहते हैं शरीर में प्रवेश करे, इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इन द्वारा उन्हें माना कौन, ब्रह्मा और प्रजापिता, इनको अपना रथ बताता हूँ, रामकृष्ण की आत्माओं को। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ, ये भी पांच विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज्य की तुम प्रतिज्ञा करते हो, वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, समझते हैं कि ये साथी ने हमको पति तो बनाई दिया, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, यहाँ तो संन्यास करना नहीं सिखाया जाता है घर बार का। कहते हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, तो मूल बात है ही विकार की। क्रोध तो सन्यासी में भी बहुत होता है, वो स्त्री को दुर्गा बनाए निर्धन का बनाए देते हैं, वो दुर्गा आती हो, वो भी अच्छे, परंतु अभी तो तमो प्रधान हो गए, अच्छे क्यों है? क्योंकि भारत को थमाते हैं, जब भारत बहुत पतित होने लगता है तो अपनी पवित्रता के बल पर थमा देते, भले अल्पकाल की पवित्रता है, दिखावे की पवित्रता है, फिर भी रहते तो पवित्र है ना, पवित्रता के वाइब्रेशन तो फैलाते हैं ना। अर्थ तो हद में और बेहद में दोनों नहीं लगते, जो फूल में अर्थ लगता है वो चैतन्य में भी अर्थ लगता है। जैसे नौ ग्रह हैं, चांद सितारे हैं, तो फूल में भी है तो चैतन्य में भी है। तो क्रोध सन्यासी बहुत होता है, वो स्त्री को विधवा बनाए निर्धन का बनाए देते हैं, उनका हाथी हो गए, अपने को रचयिता कह देते हैं। अगर तुम रचयिता हो तो रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाओ, वो नहीं सुना सकते, कुछ भी नहीं बता सकेंगे। रचना तो अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं समझा सकती, तो वो तो जब रची गई है तो उसे क्या पता, लेकिन रचयिता तो जानता है ना। अगर सन्यासी रचयिता है तो आदि मध्य अंत की सारी बात बताए, तो बता ही नहीं सकते, किसी बता ही नहीं सकेंगे। तुम जानते हो क्यों आधारित होता है इसका? ब्रह्मा विष्णु शंकर तरह कहता है, सारी ही नहीं शक्ति तरह कहता है, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया तरह कहता है। वो नई रचना रखते हैं, वो रचयता बाप बीज रूप है, सत्य है, चित्त है, आनंद का सागर है। सत्य और असत्य की बात कहाँ की? सत और सत्य की, चैतन्य और जड़ बात कहाँ की? साकार शक्ति की। दुख और आनंद ये बात कहाँ की? साकार शक्ति की। तो जो वो बीज रूप है शक्ति का, वो मनुष्य शक्ति का बीज रूप है या ब्राह्मणों की शक्ति का बीज रूप है, तो ब्राह्मण साकार है या निराकार? आकार साकार है, तो बीज भी कैसा होगा? साकार होगा। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं ये बात ही जानते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। सच कह देते हैं तुम ब्रह्मा कुमारी से दुनिया का विनाश करेंगे। अच्छा, तो तेरे मुख में गुलाब कहते हैं, ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी हुई है। कौन? तथाकथित ब्राह्मण और ब्राह्मणियां नहीं, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो असल में है। कहते हैं न ये शास्त्रों को मानती है, न बच्चे को मानती है, न किसी गुरु को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। भगवान को भूल कहते हैं कि ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में पावन तो कोई नहीं होता, और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं होता। मनुष्य न समझने के कारण जो आता है उसको बोलते रहते। अच्छा, दूसरे के किसी भी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग रूहानी बात की रूहानी बच्चों आज की अगतवाणी है 12/91। छत्तीस नंबर के रजिस्टर में 83 ये रिवाइज हुई है 24/770 को, नहीं 24/770 की अगतवाणी है और 12/91 को रिवाइज हुई। 24/770 की ओरिजिनल वाणी और 12/91 को रिवाइज हुई। कभी जिस स्थिति में अभी बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु की स्थिति में स्थित रह सकते हो। बिंदु की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठते हो तब, या चलते चलते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है? क्योंकि नाम दो कहते हैं तो गुरु दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं, लेकिन ना के बराबर ही कहेंगे। इसका अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में एक दो मिनट भी निकाल करके इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को रोक करके 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते, सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को भी बीच बीच में रोक करके ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल उसकी पावर के लिए
कैसे बना सकेंगे और कब ला सकेंगे, इसलिए अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो जो आज ये बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वो ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी की अध्यक्ष की स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया था तो व्यक्त में अध्यक्ष की स्थिति रहना भी मुश्किल लगता था और अभी अध्यक्ष की स्थिति में रहकर उसे कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है तो वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। परिचय रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहेगी वो बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति में नहीं है तो बिंदु रूप में भी स्थित होना मुश्किल लगता है। इसलिए अभी इसका भी अभ्यास करें। शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठे अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करती थी वैसे ही तो फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करके करना चाहिए। यह है फाइनल स्थिति की स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आज तक की गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है? इन्हों के प्लान भी सफल तब होते हैं जब पहले पहले ये लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके उतनी बचत की योजना करते हैं। समय बचे, पैसा बचे, एनर्जी भी बचे, एनर्जी कम लगे और कार्य ज्यादा हो, सभी प्रकार की बचत की योजनाएं कराते हैं। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े? ये जो दुनिया ये जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब जितनी भी चल रही है उसके साथ से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय हमें बहुत कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय आएगा कहाँ से? दिन प्रतिदिन शरीर की बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है और ये जो संकल्पों की स्पीड है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। अभी एक सेकंड में जो 10 संकल्प करते हैं उसकी डबल ट्रबल स्पीड हो जाएगी। ये संकल्पों की ट्रेन फास्ट होती जाएंगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर ये संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की और दूसरी तरफ इंडियन स्टेट की भी वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन अकाल मौत बढ़ता जाता है। जो अकाल मौत में मरते हैं वो सब कुछ छोटा निर्धारित बनते जाते हैं। इसलिए वृद्धि होती है लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सब बातों का सामना कर सकें। और ये बात है कि जो भी बात होती है उनको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखने, एक अंतर और दूसरा मंत्र। ये बात होती है उसका अंतर करो, ये बात यथार्थ है या अयथार्थ है, बात अदा के समान है या नहीं है। अगर बात समान नहीं है या बात समान है वो देखो, एक तो हर समय अंतर करके उसका एक सेकंड में नाक या दांत लगाओ। करना नहीं है तो फिर दांत देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नाक और दांत ये भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंतर ये दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं। तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्प्रिट सामना नहीं कर सकेगी। एक सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्प्रिट आपके सामने ठहर नहीं सकती है। क्यों नहीं ठहर सकती?
क्योंकि उनका होता है सूक्ष्म शरीर, और आप टिकेंगे बिंदु में निराकारी से भी, तो उनका सूक्ष्म शरीर भी जैसे भस्म होता हुआ अनुभव होगा, जलन अनुभव होगी, इसलिए वो तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेंगे। लेकिन ये कौन व्यक्ति कर सकेंगे जो निराकारी स्टेज में निसंकल्पी बिंदुओं के स्टेज में टिकने के अभ्यासी होंगे, तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दुनिया में इविल स्पिरिट्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी, एक एक के अंदर 14-14 सोल भी प्रवेश कर सकती है। तो उनका सामना करने के लिए बीज रूप स्टेज बहुत आवश्यक है। ये स्पिरिट का रूप कौन सा है? उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना, लेकिन ईविल स्पिरिट का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई न कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप से देखने में आएगा। जो बुरा संस्कार स्वभाव पहले नहीं देखने में आता था, उसका इफेक्ट क्या होगा? कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात और अभी अभी दूसरी बात पैदा कर देगा, वो भी कोर्ट से कहेंगे। उनकी स्थिति जो है ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी, वो अपने को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्टेट आती है उसको परख करके और उससे किनारा करना सहज होता है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएंगी। इसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो पता नहीं इनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है, लेकिन उस समय उसमें ये ईविल अर्थात बुरे संस्कारों का शोक इतना होता है जो ईविल स्पिरिट के समान ही होती है। जैसे वो बहुत तंग करते हैं वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। ये बहुत अभी होने वाला है, इसलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपने शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर के बीच बीच में उसे बिंदु की स्थिति को बढ़ाते जाओ। जितना बिंदु की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट या इविल संस्कार का कोर्स आप लोगों पर वार नहीं कर सकेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। कौन सा शक्ति रूप? निसंकल्प शक्ति, निसंकल्पी रहने की जो शक्ति है, तो ये सर्विस भी करनी है, इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है। क्योंकि अभी अंत के समय का अंत है, तो इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर के फिर उन्हों का भी अंत होगा। इतना सारा बाहर निकल करके भस्म हो जाएगा, इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो उन्हें समस्याओं से सामना कैसे कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने या समझाने की जरूरत नहीं है, अभी तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा, इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप को स्थिति को बढ़ाओ। ये सभी प्रत्यक्ष होकर के फिर छायालोक हो जाएगा। छायालोक होने के पहले प्रत्यक्ष हो फिर छायालोक होगा। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को दत्ता कार्य करना पड़ेगा। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं, भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। शानदार समझते हैं कि ये तो शक्तियों का ही काम है, ये तो शक्तियों की भुजाएं हैं, लेकिन पांडवों को क्या दिखाया है मालूम है? शक्तियों को भुजाएं दिखाते हैं और पांडवों को लंबा दौड़ा दिखाया है। तो ये भी पांडवों का इतना ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। लंबा शरीर नहीं होता है लेकिन बुद्धि लंबी होती है। इन्हों का आगे दौड़ना है, पूरा शक्तियों को आगे दौड़ाना, शक्तियों को आगे रखना, इन्हों की दौड़ की निशानी है। अच्छा पांडवों की, पांडव सेना का यादगार क्या है? पांडवों के लिए कहते हैं वो शरीर से गल गए, माना देवदान से गल मरे। शक्तियों का गायन नहीं दिखाते हैं, उसका गायन दिखाते हैं। पांडव से भगवान से गल मरे, गदी से ऋषि के वाते अपनी हसी है इसी से हमने दे दी। ऐसा जो यादगार गाया हुआ है वो प्रैक्टिकल में अभी कर रहे हो। देवान को गलाया है, घड़ी घड़ी देवान आ जाता है कि मैं पुरुष हूं। शरीर को गला देना अर्थात शरीर को गलाना माना शरीर भान को मिटाना। देवाभिमान रिंसक मात्र भी न रह जाए, देवाभिमान क्या चीज है इसका नाम निशान भी न रहे। जैसे शुरू में सहजादियां आती थी कहती थी ये क्या चीज है, ऐसी पांडव सेना की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो देवाभिमान क्या चीज होती है उसकी अवश्य अविद्या हो जाए, देहाभिमान की शुद्ध बुद्धि भी खलास हो जाए, देह अभिमानी ही होकर गिरे। ऐसा पाठ रिपीट कर रहे हो, जितना जितना अविद्या होती जाएगी उतना कोई अवज्ञा नहीं करेगी। रिपीट कर रहे हो मैंने पहले भी ये किया था क्या, दे अभिमान को गलाया था और अभी फिर से दे अभिमान को गला रहे हो, तो अवज्ञा तब होती है। जब दे भान होता है तो अवज्ञा भी करते, ईश्वरीय आज्ञाओं की अवज्ञा करते। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है जो देहभान की अविद्या स्वरूप हो जाए। कोई भी आए उनको ऐसे लगे जैसे कोई देश में है, कोई बात बोलनी होती है वो कोई चीज कहानी नहीं होती है, परंतु दूसरा खाए तो उन पर आश्चर्य लगेगा। जैसे आपके पास कोई भी आए तो ऐसा अनुभव करे कि इस दुनिया में व्यक्त भाव में कैसे रहेंगे। ऐसा वायुमंडल पांडव सेना को बनाना है। जब ऐसा वायुमंडल हो जाएगा अव्यक्त वायुमंडल, तब ही समझेंगे कि व्यक्त वतन अव्यक्त वतन बन गया। व्यक्त वतन समा जाएगा काहे में, अव्यक्त वतन माना मनन चिंतन मंथन की दुनिया में व्यक्त देश खलास हो जाएगा। आप लोग अव्यक्त रूप में समा जाएंगे और व्यक्त हमेशा के लिए मिट जाएगा। अच्छा ओम शांति।